आशी आज सुबह सिंघानिया फैमिली के साथ राजवंश विला गई थी। उसने यही सोचा था कि राजवंश फैमिली के साथ मिलकर वो अभिमान को तलाक लेने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन अभिमान किसी भी हाल में आशिका को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसकी जिद के आगे आशुतोष ने भी ज्यादा बहस नहीं की और उसे ये चैलेंज कर दिया था कि उसे एक दिन आशिका के साथ होने पर पछतावा होगा और उस दिन वो उसे छोड़कर खुद आशी के पास आएगा। आशुतोष को भले ही किसी तरह की उम्मीद हो, लेकिन जिस हिसाब से अभिमान आशी से नफरत करता था, उससे आशी को पूरा यकीन था कि अगर वो आशिका के साथ शादी में खुश भी नहीं होगा, तब भी वो आशिका को छोड़कर उसके पास आना पसंद नहीं करेगा। ऐसे में तृप्ति ही थी जो आशी की मदद कर सकती थी। आशी बिना किसी इन्फॉर्मेशन के तृप्ति के पास पहुंच गई थी। उसे देखकर तृप्ति थोड़ा सकपका गई थी। उसे यही लग रहा था कि आशी यहाँ उसे फिर से उसकी गलतियां याद दिलवाने आई है। तृप्ति उठकर आशी के पास गई और नजरें झुकाकर अफसोस भरे लहजे में बोली, मुझे माफ कर दो, ये मेरी वजह से ही हो रहा है। तुम सही कह रही हो, उस लड़की को मुझे तभी मार देना चाहिए था। अभी भी मैं तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं कर पाई, उल्टा मेरी वजह से तुम्हारी शादी और प्यार तुमसे छिन गया। मैं यहाँ आपसे लड़ने या आपकी गलतियाँ गिनवाने नहीं आई हूँ, क्योंकि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे जो होने वाला है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकती हैं, आशी बोली। उसका लहजा काफ़ी नरम था, वरना हमेशा वो तृप्ति से गुस्से या नफरत भरे लहजे में ही बात करती थी। तृप्ति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसका मन किया कि वो अपनी बेटी को गले लगा ले, लेकिन आशी उसके ऐसा करने पर नाराज़ हो जाती। बस यही सोचकर उसने अपने जज्बातों को काबू में रखा। मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, तृप्ति बोली। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। आप मेरा पहला और आखिरी ऑप्शन है। आपके प्लान्स कभी फेल नहीं होते अगर आप सोच समझकर बनाएं। सालों पहले आपने सोचा था कि सिंघानिया फैमिली की बेटी की जगह मुझे मिले, तो उसके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। मुझे उस तृप्ति बजाज की ज़रूरत है जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए किसी भी हद तक चली गई थी। इसी तरह कुछ प्लान कीजिए और मुझे अभिमान की ज़िंदगी में भेज दीजिए। पहले मुझे वो अपनी ज़िद लगता था, लेकिन जब भी उसे उस लड़की के साथ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी सबसे प्यारी चीज़ मुझसे छीन ली हो। प्लीज़ कुछ कीजिए, आशी बोली, और बोलते हुए उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। वो खुद बखुद तृप्ति के गले लग गई थी। एक पल के लिए तृप्ति हैरान रह गई थी, क्योंकि गुस्से या दुख में भी कभी इतने सालों में आशी ने उसे गले नहीं लगाया था। वो प्यार से उसे सहलाने लगी थी। तुमने अगर मुझ पर यकीन दिखाया है तो अपनी माँ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए किसी भी हद तक चली जाऊंगी। उस लड़की की जिंदगी मैंने अब तक बदतर बनाकर रखी थी और उसे एक दिन भी चैन से नहीं जीने दिया, और आगे भी यही होगा। उसके खुद के माँ बाप उससे नफरत करते हैं और जल्द ही उसका वो पति भी करने लगेगा। मैं उसे मरने पर मजबूर कर दूंगी, तृप्ति ने गहरी आवाज में कहा, और बातों ही बातों में वो आशी से वादा कर रही थी कि वो सच में उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आशी तृप्ति से अलग हुई और हाँ में सिर हिला दिया था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तृप्ति उसे बैठने का बोलकर उसके लिए कॉफी लाने चली गई थी। वहीं आशी तृप्ति के बारे में सोचने लगी। उसने हमेशा तृप्ति से नफरत की थी और काजल में अपनी माँ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये था कि काजल उसे कितना भी प्यार करे, पर उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए जो अपनापन था, वो उसे कभी आशी को खुद के लिए नजर ही नहीं आया। आज अभिमान को खुलेआम उससे छीन लिया गया था, उसकी शादी को बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी काजल और आशुतोष उसे ही समझा रहे थे। जबकि एक ही बात उसने तृप्ति से शेयर की तो वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। शायद मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा ली, मिसेस सिंघानिया, आप कभी मेरी माँ बन ही नहीं सकी। खैर, आप मुझे दिल से नहीं अपना पाई तो आई विल मेक श्योर कि आपको आपकी बेटी भी कभी ना मिले, आशी ने मन ही मन कहा। सेलिना भी उस वक्त घर पर ही थी और उनकी बातें छुपकर सुन रही थी। जैसे ही तृप्ति उसके लिए कॉफी बनाने के लिए गई, उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया था और अंदर बेड पर आकर बैठ गई थी। आशी की शादी टूट गई थी और आशिका से अभिमान की शादी हो गई थी, ये बात उससे भी छुपी हुई नहीं थी। वैसे तो हमारा प्लान फ्लॉप होने में हमारा ही नुकसान है, लेकिन ना जाने क्यों दिल से सुकून मिल रहा है। मुझे वो आशिका कभी पसंद नहीं थी, पर इस लड़की से तो मुझे और भी ज्यादा नफरत हो रही है। देखा जाए तो वो इतनी भी बुरी नहीं थी और उसने कभी मुझे मॉम से बांटने की कोशिश नहीं की। मॉम से दूर रहती थी और मॉम ने घर से निकाला तो वापस भी नहीं आई, पर ये लड़की बहुत चालबाज है, मॉम के इमोशंस का फायदा उठा रही है। जो भी हो, मुझे खुद की हार बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन इसे जीतते भी नहीं देखना चाहूंगी, सेलिना ने मन ही मन कहा। वो खुलकर आशिका को उसकी सच्चाई नहीं बता सकती थी, क्योंकि गलती से भी तृप्ति को पता चलता कि आशिका को सच तक पहुंचाने वाली वो थी तो वो उससे नफरत करती और ना जाने उसके साथ क्या सलूक करती। सेलिना को कुछ भी करके आशिका को अवेयर करना था। सेलिना ने अपना बैग खोला जिसमें काफी सारे सिम कार्ड्स थे। उसने एक सिम कार्ड अपने मोबाइल में डाला और आशिका के लिए मैसेज छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ आशिका कमरे में अकेली थी और बोर हो रही थी। अभिमान अपने काम में लगा हुआ था तो उसने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। इस बीच आशिका को एक अननोन नंबर से मैसेज रिसीव हुआ। अगर अपनी लाइफ में कुछ बेहतर चाहती हो और उस माफिया से बचे रहना है तो कभी भी अपने पति का साथ मत छोड़ना। तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हारे दुश्मन हैं। ऐसे में अभिमान राजवंशी तुम्हें बचा सकता है। जैसे ही आशिका को मैसेज रिसीव हुआ उसने आइज रोल की। वो तंज भरे लहजे में बोली, लोग आजकल भी ऐसा खेल खेलते हैं। वो तुरंत अपना मोबाइल लेकर अभिमान के पास गई और उससे बोली, क्या थोड़ी देर के लिए मुझे तुम्हारा डेस्कटॉप मिल सकता है? अभिमान ने हाँ में सिर हिलाया और थोड़ा साइड हो गया था। आशिका उसके पास में झुककर खड़ी हुई और अपने मोबाइल को डेस्कटॉप से कनेक्ट करके जल्दी जल्दी कुछ निकालने लगी थी। जल्द ही मैसेज करने वाले की लोकेशन और बाकी डिटेल्स उसके पास थी। तो ये सेलिना का काम है। अजीब बात है, मिस्टर स्काई से मेरी शादी वही लोग ही करवाना चाहते थे और अब मुझे मैसेज करके तुम्हारे साथ रहने को बोल रही है, आशिका ने हैरानी भरे लहजे में कहा। सेलिना को इसका अंदाजा तक नहीं था कि आशिका एक हैकर थी और उसके लिए किसी अननोन नंबर से मिले मैसेज का पता लगाना चुटकियों का काम था। आशिका ने अपना मोबाइल डेस्कटॉप से कनेक्ट किया था, इस वजह से मैसेज स्क्रीन पर दिख रहा था। उसे देखकर अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, वैसे इसका कहना गलत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। देखो अब तो तुम्हारे दुश्मन भी इस बात से अग्री करते हैं। नहीं, कुछ तो कारण है। सेलिना कभी तृप्ति के खिलाफ नहीं जाती है, हो सकता है इसमें उनकी कोई चाल हो, आशिका बोली। अगर चाल भी है तो काफी अच्छा खेल खेल रही है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, अभिमान ने कंधे उचका कर कहा, जिस पर आशिका उसकी तरफ घूर कर देखने लगी थी। इससे पहले कि वो उसे जवाब दे पाती उसके पास रेहान का कॉल आया। आशिका ने तुरंत अपना मोबाइल डेस्कटॉप से डिस्कनेक्ट किया और रेहान से बात करने के लिए बाहर आ गई थी।
कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ गायब हो? एक तो वो माफिया मुंबई में घूम रहा है, ऊपर से तुम भी वहीं पर हो। तुम नहीं जानती लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अगर तुम वहाँ किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ, रेहान बोला। तुम्हें कब से मेरी इतनी चिंता होने लग गई? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो माफिया स्काई भी यहाँ मेरी आंखों के सामने ही रहता है और गेस व्हाट, उसके बावजूद वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, आशिका ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। जब भी वो आकाश की आंखों में लाचारी देखती थी तो उसे दिल ही दिल में सुकून महसूस होता था। अपने परिवार के सामने आकाश खुलकर ये भी नहीं कह सकता था कि वो आशिका से शादी करने वाला था और अकेले में अभिमान के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। क्या तुम उसके साथ क्या कर रही हो? तुम सच में पागल हो गई हो ऐश, रेहान हैरानी से बोला। हाँ बिल्कुल, और मैंने अपने अननोन हस्बैंड को भी ढूंढ लिया है जिससे मुझे दोबारा शादी करनी है। गेस व्हाट, वो कौन है? खुद मिस्टर स्काई का बेटा। सोचो, जिस लड़की को वो अपनी पत्नी बनाना चाहता था वो उसकी डॉटर इन लॉ निकली। आशिका ने कॉल पर सब कुछ रेहान को बता दिया था। ये सब सुनकर रेहान को भी झटका सा लगा और वो सिर पकड़कर कुछ देर सब कुछ समझने की कोशिश करने लगा। वहीं अभिमान, जो दरवाजे पर हाथ बांधकर आशिका की बातें सुन रहा था, उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी क्योंकि आशिका सब कुछ काफी एक्साइटेड होकर बता रही थी। अगर वो खुद खुलकर आशिका के जज्बात पूछता तो वो कभी नहीं बताती कि अभिमान से शादी करके वो खुश है। तो क्या अब तुम उससे डिवोर्स नहीं चाहती हो? रेहान ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं कभी उससे अलग नहीं होने वाली हूँ रेहान, वो एक अच्छा इंसान है और उस घटिया आदमी ने उसके साथ भी काफ़ी कुछ बुरा किया है। अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में मेरी फ़िक्र करने वाला तुम्हारे अलावा कोई और मौजूद है तो वो राजवंश फैमिली के ही तीन शख्स हैं। मिस्टर अभिमन्यु राजवंश ने भी मेरा बहुत साथ दिया और इशिका ने तो मुझे पहले भी अकेले नहीं छोड़ा था। रही बात अभिमान की, तो मुझे नहीं पता मेरी शादी उसके साथ कैसे हुई है, पर मेरी लाइफ में कुछ तो अच्छा हुआ ये सोचकर तसल्ली मिलती है, आशिका ने जवाब में कहा। उसकी आवाज़ शांत और ठहरी हुई थी। वहीं उसकी बात सुनकर अभिमान ने धीरे से कहा, काश यही बात तुम मेरे सामने एक्सेप्ट करती तो मुझे खुशी होती, पर नहीं, तुम्हें तो इमोशनलेस रोबोट बनकर रहने में ज़्यादा खुशी मिलती है। तुम्हारे लिए खुश हूँ ऐश, रेहान बोला। तुमने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ बुरा देखा है और इतना सब कुछ होने के बाद कुछ तो अच्छा हुआ, लेकिन क्या तुमने कभी मिस्टर राजवंश से जानने की कोशिश नहीं की कि तुम दोनों की शादी कैसे हुई थी? तुम उनसे नहीं मिली हो लेकिन रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए कपल को कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है और काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, फिर तुम्हारे बिना कोर्ट जाए ये शादी कैसे हो सकती है? रेहान के पूछने पर आशिका ने भी इस बात पर गौर किया। उसने अब तक इस बारे में अभिमान से कुछ नहीं पूछा था। फोटो में उसने जिस लड़के को देखा था वो अभिमान से काफी अलग भी लग रहा था, लेकिन हाँ, वो अभिमान ही था। अब तक नहीं पूछा लेकिन अब पूछना चाहिए, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, आशिका ने जल्दी से कहा और कॉल कट कर दिया था। वहीं अभिमान, जो अब तक आशिका की बातें सुनकर खुश हो रहा था, जैसे ही उसने ये सुना कि आशिका उनकी इस अजीब शादी के सच के बारे में जानना चाहती है, ये सुनने के बाद उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। मर गए, अभिमान ने सिर पकड़कर कहा और जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था ताकि उसे आशिका के सवालों के जवाब ना देने पड़े।